وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کے ڈے 20 کا آغاز کریں گے اور ہمارا آج کا سبق سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 سے شروع ہوگا. سورۃ الحج کے نام سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ قیامت کی یاد آتی ہے. پوری سورت میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے آنے کا یقین دلایا. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا چنا کیسے لگتا ہے کہ ہر وقت ان کا تذکرہ زبان پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی تمام چیزوں کو غور و فکر سے سننے والا بنا دے جو ہمارے اندر بھی حضرت ابراہیم جیسا ایمان اور عمل پیدا کر دے. بہت آسان ہوتا ہے قصے کہانیاں پڑھنا کسی کے تذکرے سننا لیکن بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم اس کو عملی تقاضوں پہ پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. نوٹ کیجئے گا, ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے جو مسجدوں اور مدرسوں اور دین کی جگہوں پہ نظر آنی چاہیے, لیکن ایک دوسری طہارت بھی ہوتی ہے جو سوچ کی تزکیے کی ضرورت ہو کہ جب تم اللہ کے گھر بناؤ تو ظاہری طور پر بھی اس کو پاک رکھو اور تمہاری سوچیں بھی پاک ہوں. اور لوگوں کو حج کے لیے اس نے عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے. یہاں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا, روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ جو کام آپ نے مجھے دیا تھا وہ تو میں نے کر لیا, لیکن اب لوگوں کو کون بتائے گا. جیسے ہماری سورج میں ایسے آتا ہے کہ اب ہم نے پروگرام کی تیاریاں تو کر لیں تو لوگوں کو کیسے بتائیں. پھر مارکیٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس پہ فلائرز بنتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مارکیٹنگ کا جو طریقہ بتایا وہ اخلاص تھا. لکھ لیجیے اس جملے کو, اخلاص والی کوششوں کو بہت زیادہ تشخیر کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس طرح اس میں کشش پیدا کر دیتا ہے کہ بہت سارے فلائرز اور بہت ساری میسیجز کے باوجود بھی بعض دفعہ وہ لوگ نہیں آ پاتے جو کسی کی تڑپ کر کی بھی کوشش اور رو رو کے مانگی ہوئی دعا کے بعد نظر آتا ہے. ظاہری اسباب اختیار کرنے چاہیے, لیکن یاد رکھیے صرف ظاہری اسباب کام نہیں دیتے. ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا اور ایک پکار لگا دی. آج تک لوگ اس پکار پہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. آپ کا میرا بھی یہی کام ہے, اپنے اندر اخلاص لائیں, ان جگہوں کو پاک رکھیں, ظاہری طور پر بھی لوگوں کی عزت کرتے ہوئے ان جگہوں کے ماحول کو اور ارد گرد کی چیزوں کو ایسا کیجئے کہ وہ اللہ کی بات کو جذب کرنے کے قابل بنے اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کی آمد کا ذریعہ بنے. اور اس کے بعد پھر آپ اللہ سے یہ دعائیں کریں کہ مالک تو ہمارے لیے اس کام کا اجر صرف چند دنوں سالوں تک نہ رکھنا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح رہتی دنیا تک خیر کا یہ چشمہ پھوٹتا رہے. یہی سوچ, یہی تڑپ اور یہی خواہش ہونی چاہیے. फिर इसके बाद कोई सुने या ना सुने, हमारा काम क्या है? पुकारें, तड़प कर पुकारें, दुआ करें। और आप देखिए कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि इस घर को बनाने के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से को हज का कोर्स करवाया गया, लोगों को कहा गया हज करो बेहतर होता है। नहीं, जब आप अपने दिल की सच्चाई के साथ कोई पौधा लगाते हैं, फिर अगर दुनिया में फल जाए तो बड़ी खूबी की बात है, आपकी ज़िंदगी में उसमें बहार आ जाए तो आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन याद रखिए कि अक्सर ऐसा ना भी हो अगर कि आपकी कोशिशें तो इखलास वाली थी, तड़प तो बहुत थी, तमन्नाएं तो बहुत थी, लेकिन फिर भी नतायज नहीं दिखे, तो क्या करें? नंबर एक, मुहासबा। मेरा दिल ठीक है कि मैंने किसी के मुकाबले पे तो ये काम नहीं शुरू किया, दिखावे और रियाकारी के लिए तो नहीं किया। और मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह की रहमत होती है, दिल में इखलास ना हो और नेकी का काम सिर्फ दूसरे की देखा देखी किया जाए, शुक्र करें कि उस पौधे पे बहार नहीं आई, वरना अगर बाहर आ गई तो पांव जमीन पे ना लगे उन लोगों का जो सिर्फ दुनिया में दिखाने के लिए और एक दूसरे के तकाबुल के लिए और गिनने के लिए वो काम करते हैं। दूसरी चीज़, इस चीज़ का मुहासबा करें कि तरीक़ाकार ठीक है, दिन ठीक चूज़ किया था, वक्त ठीक था, लोगों से जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है क्या वो बेचारे उस सारों को पूरा कर भी सकते हैं? बस दैट्स इट। अल्लाह ताला हमें कोशिशों में इखलास लाने वाली बना दें। और सबसे बड़ी बात है, हम तो आ गए हैं, कोई आए ना आए, हम तो सुना रहे हैं, कोई सुने ना सुने, हम तो बुला रहे हैं, कोई बुलाए ना बुलाए। एक ईमान वाला कभी हेड काउंट में नहीं होता, वो ये नहीं कहता कि मेरे बुलाने पे 100 लोग आए हैं तो मैं कामयाब हूँ, और अगर 10 आए हैं तो थोड़ा कामयाब हूँ, और एक भी नहीं आया तो मैं नाकाम हूँ। ज़िंदगी में हमेशा अल्लाह के लिए काम करके वही असूल इख्तियार कीजिए जिसको हमारे कल्चर में कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। अल्लाह ताला इखलास वाली नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद कुर्बानी के जानवरों की बात है। आप भी हैरान नहीं होते कभी? मैं तो बहुत हैरान होती हूँ। अल्लाह के इस कुरान ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, चाहे वसीयत है या विरासत है या तलाक है या इद्दत है या कुर्बानी के जानवरों की बात है। तो ये भी एक शायर इल्ला में से एक चीज़ है जिसका यहाँ तस्करा है, आइए देखते हैं। फरमाया, ये था तामीर काबा का मकसद, और जो कोई अल्लाह की कायम करदा हुरमतों का एहतराम करे तो ये इसके रब के नज़दीक खुद उसी के लिए बेहतर है। शायर इल्ला का लफ्ज़ आया है, शायर इल्ला हर वो चीज़ जिसको देकर शऊर आए। अल्लाह के लिए शायर इल्लाह का लफ्ज़ जब आया तो क्या पता चला इससे कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको देखकर अल्लाह की याद आती है, इस्लाम की याद आती है। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ आजकल कुर्बानी है, हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये था तामीर काबा का मकसद, जो कोई अल्लाह की कायम करदा हुरमतों का एहतराम करे तो ये इसके रब के नज़दीक खुद इसी के लिए बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी जानवर हलाल किए गए माँ सिवा इन चीज़ों के जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं, बस बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करे गोया कि वो आसमान से गिर गया, अब या तो इसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा इसको ऐसी जगह पर ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। इस आयत को पढ़ के भी मुझे वो मिसाल याद आती है जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये मुशरिक की पहचान है। आसमान पे रबते होने लगते हैं उस बंदे के जो अल्लाह से जुड़ता है, अल्लाह से जुड़ता है, अल्लाह से मांगता है, और वो एक दर जिसको तू इन छोड़ता है उसके बाद तू दर धर का मुख्ताज हो जाता है। तो शिर्क की गंदगी को इससे खूबसूरत तरीके से शायद ही को समझा सके। अपनी ज़िंदगी में एक असूल लिख ले, जो लेना है तो अल्लाह से लेना है, और नहीं मिलना तो उसी से नहीं मिलना। अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और से मैंने मांगना है, मुझे नहीं ज़रूरत उसकी, रखें ये सब अपने पास। ये जब आपके अंदर खुदी आती है तो फिर अल्लाह भी आपकी बात की कदर करता है। तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक इन हदी के जानवरों से फ़ायदा उठाने का हक है, यानी आपने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, आप सवारी के तौर पर उसको इस्तेमाल करना पड़े तो कर सकते हैं। फिर इनके कुर्बान करने की जगह इसी कदीम घर के पास है। हम हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया ताकि इस उम्मत के लोग इन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो उसने उनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है और इसी के तुम मती फरमान बनो। और ए नबी, बशारत दे दो आजिज़ाना रविश अख्तियार करने वालों को। कौन होते हैं आजिज़? ذرا سی ایک لسٹ پھر دوبارہ بنا لیجئے، بہت ساری لسٹیں قرآن نے بنوا تو دیں، اب اللہ کرے کہ عمل میں بھی آ جائیں۔ تو مخبت کا تذکرہ پیچھے بھی سنا تھا، یہاں دوبارہ مخبتین کی بات آ گئی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مخبت یا عاجز کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، آگے سے مذاق نہیں اڑاتے، باتیں نہیں چھانٹتے، جو مصیبت بھی ان پر آتی اس پر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، رونا ہی نہیں، روتے رہتے ہر وقت اپنے دکھوں اور اپنی تکلیفوں کا، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چلیے اپنی چیک لسٹ بناتے ہیں، اس وقت ذکر کی محفل میں دل کا حال کیا ہے؟ کیا قرآن کی محفل میں دل کانپ رہا ہے؟ نہیں کانپ رہا تو دعا مانگیے کہ اللہ وہ دل دے دے جو تیری خشیت سے کانپ اٹھے۔ جو مصیبت آئی یا آتی ہے اس پہ صبر کرتی ہوں، اور شکوہ اور شکایتیں اور شور مچانا صبر کے منافی ہے۔ وہ صابر نہیں ہے جو رو دھو کے کہ اچھا پھر میں صبر کرتا ہوں۔ کیا نماز قائم ہوئی؟ کیا پچھلے دو پاروں سے جو نماز کے پیچھے لگے تو کیا واقعی اب نماز کی کیفیت میں تبدیلی آئی؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے دیے کو کیا اسی کے راستے میں خرچ کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ ہے ادھر، آپ نے بکرے چھترے تو کٹتے دیکھے ہوں گے بچپن میں بھی، لیکن ہمارے کلچر میں عموماً اونٹ نہیں کاٹے جاتے، تو یہاں اب اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ دیکھیے۔ ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو حاجت پیش کرتے ہیں، یعنی گھروں میں بھی بھیجو سفید پوش لوگوں کو جن کو شاید عید کے عیدی گوشت نصیب ہوتا ہے، اور ان کو بھی کھلاؤ جو تمہارے دروازے پہ آ چکے، جو دستک بھی دیتے ہیں اور تمہارے دروازے بھی توڑتے ہیں، کبھی ان کو برا نہ کہو۔ بعض دفعہ قربانی کا گوشت کاٹتے کاٹتے ہم کئی قسم کے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے، پھر جو یہ غریب آتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس گوشت کی بڑی بڑی راننے اور بڑے خوبصورت ٹکڑے سسرال میں تو بھیجتے ہیں، لیکن پھر غریبوں کے ہاتھوں میں وہ چھچڑے اور وہی ٹوٹی ہوئی بوٹیاں ہی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ دوسری بات، آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں قربانی کے شاعر کا بھی بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، کئی اعتراضات ہوتے ہیں، ایک ہے غیر مسلموں کی طرف سے، اور وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسلم باربیرک ہیں، یہ مسلم اینیمل رائٹس کے خلاف کام کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں جانوروں کو کاٹنے کو، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ان جانوروں کو نہیں کاٹو، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جس جس جانور کی قربانی جائز ہے نا، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ان کو نہ کاٹا جائے گا نا تو نتیجہ کیا ہوگا، ان کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو بہت ہی بھونڈا قسم کا مطالبہ ہی کہہ لیجئے، اور وہ کہے کہ قربانی کے گوشت کی کیا ضرورت ہے، اسی پیسے سے سڑکیں بناؤ، اسی سے ہاسپٹل بناؤ، اس سے اسکول بناؤ، اور کیا ہر سال مسلمان اتنا گند مجا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسی باتیں ہمارے اپنے مسلمز کے منہ سے نکلتی ہیں، اور گوشت نہیں کھانا، اور یہ ہے، آپ دیکھیے کہ یہ ہے اصل میں اللہ کی آیتوں کا مذاق۔ آپ یہ مطالبہ اس وقت کیوں نہیں کرتے جب آپ لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے اپنی شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے شادی پہ خرچ کرنے کی، سڑکیں بناؤ، اسکول بناؤ، اور دس اینڈ دیٹ، خود ہی سوچ لیں۔ آہستہ آہستہ جو چیز مسلمانوں میں سے بھی اب نکلتی جا رہی ہے وہ کیا ہے، مسلم ریچولز کی تعظیم اور اس کی عزت۔ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کو تو قربانی کے وقت کا انتظار ہوتا تھا، آپ نے تو اس کے ساتھ کئی چیزیں اپنے ذہنوں میں ابھی تک بسائی ہوں گی۔ آج ہمارے بچوں کا قربانی کے عید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اکثر ماؤں کے منہ سے سنا ہے بچے گوشت نہیں کھاتے، کوئی کہتا ہے یہ میرا پیٹ تھا آپ نے اس کو کیوں مار دیا، کوئی کہتا ہے مجھے خون کی بو آتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر کے بتا دیا کہ مجھ سے زیادہ کوئی رحیم نہ بنے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جب رحمان سے زیادہ رحم والے بنتے ہیں نا، تو وہ جانوروں کے حقوق کے نام پر تو اتنی بڑی باتیں کریں گے، ایسی غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کیا خیال ہے واقعی ہم قربانی کریں، بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ پیسہ کہیں اور لگائیں؟ تو یاد رکھیے جو اصول ہے وہ اصول ہے، قربانی فرض نہیں ہے کسی بھی کے لیے، لیکن اس کا یہ کہہ کر مذاق اڑانا کہ یہ پیسے کا زیاں ہے اور مکھیاں آتی ہیں اور کیڑے آتے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف عید کے عیدی گوشت کھاتے ہیں، और जो गोश्त का खून मट्टी में जाता है ना, ये खाद बनती है जब वो जानवरों को ज़िबह करते हैं। तो फिर इसी तरह से आप देखिए, ये गोश्त कहत ज़्यादा इलाकों में फ्रीज़रों के ज़रिए बड़े बड़े जहाज़ों पे लाद के भेजा जाता है। सिर्फ एक सुन्नत तरीके के ऊपर इतना एतराज़ क्या होता है? अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें बाकी खर्चों पे काबू पाने वाला बनाए। कोई कह दे मैं इस साल मेकअप का खर्चा अपना जो है वो मैं अल्लाह के बंदों को कहीं ना कहीं कुछ देने के लिए गुजारती हूँ, मैं शादी का जोड़ा वही पहन लूंगी जो मेरी भाभी ने पहना था, और मैं इस जोड़े को कहीं किसी भी सोमाली इलाके में या कहीं कहत वाले में भेजूँ, फिर तो बात है। बसंत आती है तो पतंगों पे लगता है, जब बहार आती है तो फूलों पे लगता है, जब कॉन्सर्ट्स होते हैं तो किस किस नाम पे लगता है, और इधर आप देख लीजिए कि सारे मामलात इस पे। एक और जो इतराज़ बहुत बड़ा फैलाया जाता है, तीसरा इतराज़ वो क्या है? कहते जानवर को तकलीफ़ बहुत होती है और हमसे ये तकलीफ़ देखी नहीं जाती। इसी पे फिर वो इस्लामिक और गैर इस्लामिक ज़बीहा की भी बात होती है। तो इस पे एक यूनिवर्सिटी है, हैनोवर यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक रिसर्च की थी। डॉक्टर्स ने दो जानवरों को लिया, उनके सरों में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक किस्म का आला है जो जानवर के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, तकलीफ का एहसास है, उसको नोट करता है। और उन्होंने एक को, जिसको बोल्ट स्टनिंग कहते हैं, जिसको हमारे कल्चर में छटका कहते हैं, पहले शूट करते हैं जानवर को, जब वो मरने के करीब होता है तो उसकी गर्दन काट देते हैं, और दूसरा वो था जो इस्लाम ने तरीका दिया है। तो उन्होंने हैरत अंगेज हद तक ये चीज़ डिस्कवर की कि जिसको इस्लामिकली ज़िबा किया था उसको दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो रग दिया कटती है ना, उससे दर्द खत्म हो जाता है, और जिसको बोल्ट स्टनिंग की, वो कहते हैं जानवर दहशत से मर जाता है, तो उसको तकलीफ। और सबसे बढ़ के बात कहूँ कि माँ से बढ़कर जो प्यार जतलाए वो फब्बे घुटन कहलाए। अल्लाह को पता है किसको ज़िबा करना है किसको नहीं करना, और अपने बच्चों के जहन खोलिए, मत ऐसी बातों के ऊपर उनको करें, बल्कि उनको खिलाएं, उनको दिखाएं, देखो ये अल्लाह के रास्ते में गया। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो बकरे के सामने देखकर उसकी आंखों में से हल्के हल्के आंसू से होते थे, तो ये फीलिंग्स दिलाई जाती थी, देखो ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा है, हाँ ये हमसे अच्छा है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस बात की कि हम इन सारी चीज़ों को गौर व फिक्र से समझ सकें। फरमाया, इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मुसख़्खर किया ताकि तुम शुक्रिया अदा करो, ना इनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं वो तो हम खा जाते हैं, और ना खून, वो तो पानी में बह जाता है, वो तो मट्टी में बह जाता है, फिर पहुँचता क्या है? वला की यनालुहु तक्वा मिनकुम, और उसे तो तुम्हारा तकवा पहुँचता है। क्यों भला? सूरत मायदा में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तकवा वाली कुर्बानियाँ ही कबूल करता है। अल्लाह हमें तकवा दें। बड़े बड़े बकरे छतरे करना और लोगों का जीना हराम करना, ये सब कुछ इसमें आता है। तकवा के साथ एक छोटी सी कुर्बानी भी देना ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा दिखावे और रिया के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने को। इसने इनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख़्खर किया ताकि इसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम इसकी तकबीर करो। तकबीरात पढ़ी जाती हैं, उसकी तरफ इशारा है। और ए नबी, बशारत दे दो नेकुकार लोगों को, अल्लाह ताला हमें नेक बना दे। और आगे बहुत प्यारी आयत है जिसमें आज के मुसलमानों को यकीन करना चाहिए। अल्लाह की आयतों में, इस कुरान पाक की आयत में कई आयत ऐसी हैं कि जिससे आज आए इस आहिस्ता यकीन उठता जा रहा है। और उसमें एक बात क्या है कि हालात बड़े ख़राब हैं, मुसलमानों की जिंदगियों को, जानों को, मालों को बड़ा ख़तरा। आइए ज़रा देखिए अल्लाह का जवाब क्या है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ। यकीनन अल्लाह दिफा करता है, मुदाफियत करता है, प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है, किसकी? इन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए हैं। इन लोगों की नहीं करता, इनकी तरफ से करता है। यानी जब दूसरे उनको सताते हैं तो अल्लाह इनकी तरफ से बात करता है, जब दूसरे इनको मारना चाहते हैं अल्लाह इनकी मदद कर देता है, और जब दुश्मन मारने आ जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को भेज देता है। यकीनन अल्लाह किसी खाइन काफरे नेमत को पसंद नहीं करता। थोड़ा सा इसको भी देखिए, आज हम उस लेवल के ईमान पे ही नहीं है कि अल्लाह की मदद आए। किसी ने ताना दिया किसी मुसलमान को, कहा तुम बहुत कहते हो बदर में फरिश्ते उतरे थे, आज क्यों नहीं उतरते? इतना मुसलमानों को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, तो क्यों नहीं उतरते? तो उसने जवाब बड़ा खूबसूरत दिया, उसने कहा फरिश्ते आए थे, फिर उसको कहीं मुसलमान ही नहीं दिखे तो वह वापस चले गए। याद रखिए, जब इस्लाम कुछ और मुसलमान कुछ और बन जाए तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद के लिए एक खास क्राइटेरियन है। जब ईमान का वो सर्टन लेवल, वो खास दर्जा नहीं होता, मदद नहीं आती। आप एक टिकट खरीद सकते हैं लेकिन फर्स्ट क्लास का खरीदते हैं, लेकिन एक खास क्राइटेरियन होता है। आप कपड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन किसी खास ब्रांड का लेने के लिए एक खास वक्त होता है। अल्लाह की मदद के लिए जो ईमान मतलूब है वो मांगिए। अभी से दुआ कीजिए कि अल्लाह तू हमें शायर अल्लाह से की खिदमत करने वाला बना और शायर अल्लाह की हम इज्जत करें। याद रखिए कभी दाढ़ी का, कभी मुसल्ले का, कभी टोपी का, कभी मस्जिद, कभी चार शादियों, कभी हूरों का मजाक ना उड़ाएं। ये सब चीजें अल्लाह की मदद को रोक देती हैं। और जब ईमान की बात आए तो हम मसलियत पसंद होने लगे, जब कुर्बानियों की बात आए तो हम पैसे बचाने वाले बने लगे, तो क्या अल्लाह ऐसे मुसलमानों की हिफाजत करेगा? ऐसा नहीं है। याद रखिए हम एक जुमला बहुत बोलते हैं, हम बड़े मजबूर हैं, हम बड़े मजबूर हैं। तो लिख लीजिए, जब तक हम मजबूर रहेंगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। खुद जानबूझ के मजबूर बनने वालों को अल्लाह की मदद नहीं आती। जब तक मसलियतों को नहीं छोड़ेंगे मदद नहीं आएगी। जब तक अपनी रसूमात, अपने स्टाइल ऑफ लिविंग से हटेंगे नहीं अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसा मोमिन बना दे कि अल्लाह को हमारी जान बचाने के लिए फरिश्तों को उतारना पड़े तो फरिश्तों को उतार दे। अल्लाह ताला अपनी मदद पे कादिर है। असल बात है कि हमें उस मतलूबा मेयार पे पहुंचना है। फिर यहाँ पहली दफा इजाजत दी जा रही है, 13 साल तक हाथ रोके रखने का हुक्म रहा। मदीना में आने के बाद आयते के ताल पे ये पहली आयत है और देखिए कितनी पाबंदियों के साथ। उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाजत दे दी गई इन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है क्योंकि वो मजलूम हैं और अल्लाह यकीनन इनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाले गए सिर्फ इस कसूर की बिना पर कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह। हर दौर के मुसलमान का यही जुर्म बहुत था मारे खाने के लिए कि वो एक अल्लाह को क्यों मानता है। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए से दफा न करता तो खानकाहें और गिरजे और माबद और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है सब मिसमार कर डाली जाती। अल्लाह जरूर इन लोगों की मदद करेगा जो उसकी मदद करेंगे। अल्लाह बड़ा ताकतवर और जबरदस्त है। इसको हाईलाइट करें, शायद आपने बेदहानी में सुना हो। आयत पढ़ती हूँ दोबारा, आप सबकी तवज्जो इस आयत के टेक्स्ट पे हो और आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस आयत का मिसदाक बना दे। क्या वल यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, सब मिलके पढ़ें जरा इस उससे को, वल यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, पढ़िए फिर पढ़िए, आगे भी पढ़िए। अब इसका तर्जमा सुनिए, अल्लाह जरूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसकी मदद करेंगे। क्या अल्लाह को मदद की जरूरत है? तो यहां अल्लाह की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। याद रखिए मैं और आप अपने काम नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों की खुशियां नहीं देख सकते, हम अपने बेटों के घर नहीं बसा सकते, हम अपने शौहरों के दिलों में अपनी मोहब्बत नहीं डाल सकते। हैंड्स अप कर लीजिए, सॉरी, इट्स अनअचीवेबल टारगेट। ये है वो रास्ता जहां से आप अपने काम अल्लाह के सुपुर्द कर सकते हैं। और वो क्या है कि आप अल्लाह के दीन की खिदमत शुरू कर दें, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। लेकिन जब लोग दीन को गिरा पड़ा देखें, ठोकरों में देखें, दीन पे बातें छटती हुई देखें, दीन पे इल्जाम लगते देखें और अपनी खुशियां मनाते रहें, अपने खाने पकाने, अपनी जिंदगियां, तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह की मदद नहीं आती। और सच बात है, कितना खुश हैं वो लोग जिन्होंने दीन को छोड़ा हुआ है। दीन के काम को छोड़कर मैंने कभी आज तक किसी को खुश होते तो नहीं देखा। हाँ, डिप्रेशन में जाते देखा है, डॉक्टरों के चक्कर लगाते देखा है, साइकाट्रिस्टों के पास जाते देखा है और फिर कुछ साल के बाद बरमला इकरार करते देखा है। वो टर्निंग पॉइंट जिंदगी का बड़ा बुरा था जहां मैंने ये सोचा नहीं थक गई हूं, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, मेरे शौहर दूसरी शादी ना कर लें, मेरे भाई बहन मुझे बुरा ना कहे, मेरी माँ मुझे दूध ना बख्शे, और मैंने कहा भी घर और मैं और मेरा घर मेरे बच्चे। घर साथ है, दीन घर साथ सिखाता है, कोई दीन ऐसा है नहीं जिसमें घर ना हो। तो याद रखिए कि सामान्य राहत से राहत नहीं मिलती, असल खुशी वो है जो अल्लाह के काम करने पे मिलती है। और मैं अपने ऊपर लेकर इसको कहती हूँ, थोड़ा सा एक नुक्ते बराबर भी अगर अल्लाह के दीन का काम करते हैं ना, तो मैं गवाही देने को तैयार हूँ कि आप अल्लाह के काम करें, अल्लाह आपके करेगा। मुझे तो यही लगता है कि मैं तो उतना अच्छा अल्लाह का काम कर नहीं पाती जितने अच्छे मेरे काम अल्लाह कर देता है। तो हमेशा याद रखिए, मजबूरियों को फेंक दीजिए। ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार होता है कि वो एक इंसान को बेकार करना चाहता है। वो फिर उसको कहाँ डालेगा, घर का काम सारा दिन करेंगे, फिर फालतू चीज़ें, फिर फैशन मैगजीन, फिर उसके बाद ज़रा फेसबुक पे देखो, फिर कोई कपड़े देख लो, फिर शॉपिंग पे चले जाओ, कूपन ले लेके फिर रहे हैं, 1-2-4 यूरो बचाने के लिए पता नहीं कितना ज़ाया करते हैं। वरना 24 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, 1-2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं गिने, 1 से 24 तक 24 घंटे दिए मालिक ने मुझे आपको। ये सिर्फ हमारी अपनी भोंडी तरतीब है कि हम कुछ कर नहीं पाते। और सच बताऊं कि बरकत ही मिलती है दीन का काम करने से। हमारे कल्चर में एक काम बात है, और वो क्या मतलब हदीस भी है कि पैसा देने से बरकत होती है, अल्लाह के रास्ते में माल दें तो माल में बरकत होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे माल अल्लाह के रास्ते में देने में माल में बरकत होती है ना, ऐसे वक्त अल्लाह के रास्ते में देने में वक्त में बरकत है, सेहत अल्लाह के रास्ते में देने से सेहत में बरकत है, अल्लाह आपको डॉक्टरों के पास जाने से बचा लेता है, और अगर आप जवानी अल्लाह के रास्ते में देते हैं आप बूढ़े नहीं होंगे। अल्लाह ने वहां आपकी जिंदगी को रोक दिया जहां से आप दीन का सिलसिला शुरू करते हैं, और अल्लाह बड़ा ताकतवर और जबरदस्त है, उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। करें क्या, अल्लज़ीना इमक्कन्नाहुम फिल अर्दि अकामुस्सला। अब यहां बताया गया कि जब कहीं इस्लाम को गालिब करना है तो उसका तरीका कार क्या होगा। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम जमीन में इक्तदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, जक़ात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे, और तमाम मामलात का इंजामे कार अल्लाह ही के हाथ में। अल्लाह से दुआ करें आज हम मुसलमान इस लेवल पे पहुंचे। 3 सेकंड गौर कीजिए, आज 100 कुछ मुल्क है दुनिया में, 100+ मुस्लिम कंट्रीज है, ये सारा कानून कहाँ लागू हुआ है? गिनती के 1 या 2 मुल्क में। ये है आज के मुसलमान का जुर्म। तो याद रखिए, मेरी आपकी जाती नमाजें अल्लाह की मदद नहीं लाएंगी, दुनिया में अल्लाह का निज़ाम कायम करें, और उसके लिए वो सिस्टम बनाएं कि जहां चलते फिरते लोगों को रब याद आए। और ये चीजें आज जरूरी हैं, नमाज ज़कात तक तो बात हो ही जाती है, ये नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, कहते हैं ये है तबलीगी जमात लगी हुई है, वो अपने साइकिल में घूम रहे हैं, हमारा इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, मेरा आपका फर्ज बनता है जहां बुराई देखें उस पर बात करें, और जहां नेकी की को मौका मिले उस पर लोगों को रग़बत दिलाएं। दुआ कीजिए अल्लाह में हिकमत से ये काम करने वाला बना दे।